नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और उन मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पत्र के माध्यम से अपने आशीषों को हम तक पहुँचाते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि कैन और हाबिल, उनके विश्वास, और यहाँ तक कि हमने हानोक का विश्वास भी देखा। हानोक में हम विश्वास का आचरण देखते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आकर आपको उसकी संगति का जीवन जीना है, अतः विश्वासी का जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन को आगे बढ़ाएं, हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सुंदर मौका दिया है कि हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनकर एक साथ अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से आपके विश्वास के प्रति जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम में से हर एक श्रोता भाई बहनों को आशीषित करें, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। इस घड़ी विशेष हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार हैं, निराश और चिंतित हैं, परेशान और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन पर अनुग्रह करें, अपनी शांति और आनंद उनके जीवन में दें, उन्हें छुए और चंगाई प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा उन्हें धैर्य और हिम्मत दें ताकि वे इस बात को जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, और यही कारण है कि आज आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 5 पद को निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके ठहराए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 में हम पहली बार हानोक का उल्लेख देखते हैं। यह अध्याय दुख का है। उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। लिखा है कि आदम जब 130 वर्ष का था तब शेत उत्पन्न हुआ और आदम मर गया। शेत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह भी मर गया। आदम में सब मरते हैं, समयों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 एक प्रकार से कब्रिस्तान में विचरण करना है और कब्रों पर लिखे लेख को पढ़ना है। आज भी कहानी का रूप वही है। मनुष्य आज भी मरता है। अनंत काल की तुलना में मनुष्य का जीवन क्या है? मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय उसके 19 से 24 पद में हम पढ़ सकते हैं, हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह हनोक की कहानी है। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय में वंशावलियों का एक निश्चित क्रम है। वहां लिखा है कि उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए, परंतु उनके बारे में कुछ नहीं है। बस एक पुत्र का नाम लिया गया है, एरेद के पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हनोक था। मेरे प्रियो, लिखा है कि हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसके एक पुत्र मतुशेलह उत्पन्न हुआ। संभवतः मतुशेलह उसका पहिलौठा था। मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर की संगति में चलने लगा। निश्चय ही मतुशेलह के जन्म से पूर्व वह परमेश्वर की संगति में नहीं था। अति संभव है कि उस समय उसका जीवन उदासीन और पाप में था। मतुशेलह को देखकर हनोक को अपने उत्तरदायित्वों का बोध हुआ और उसका जीवन बदल गया। अब वह परमेश्वर की संगति में चलने लगा। मेरे मित्रों, यदि आपके परिवार में बच्चों की उपस्थिति यदि आपका जीवन न बदले तो आपका जीवन एक प्रचारक भी नहीं बदल सकता है। बच्चों में परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है। जबकि वे बोल नहीं पाते हैं, वे परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं। इसी प्रकार मतुशेलह ने हनोक का जीवन बदल दिया। लिखा है कि उसके और भी संतान उत्पन्न हुए, परंतु वह मरा नहीं, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक में हम विश्वास का आचरण देखते हैं। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है कि विश्वास ही के कारण वह परमेश्वर द्वारा उठा लिया गया था कि मृत्यु को ना देखे। उसके उठाए जाने से पूर्व उसकी गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण था कि वह विधि विधान की अपेक्षा विश्वास का आचरण रखता था और उसका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया, अपने साथ उसे ले लिया। मनुष्य के उठाए जाने की यह पहली घटना है। मेरे प्रियो, मेरे विचार में यहां हमारे लिए आत्मिक संदेश है। कुछ लोग नूह के उदाहरण द्वारा यह कहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में रहेगी, परंतु सच तो यह है कि नूह कलीसिया को नहीं, महाक्लेश में उधार पाने वालों का प्रतिनिधि है। ये लोग कौन हैं जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखेगा? 144,000 इसराइली तथा अनेक अन्य जाति, वे कलीसिया के अंग नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि महाक्लेश की आंधी से पूर्व और 4 घुड़सवार निकलेंगे, तब 144,000 इसराइलियों पर और अनेक अन्य जातियों पर मुहर लगाई जाएगी। ये नूह द्वारा दर्शाए गए हैं। अब यहां बात परमेश्वर की सुरक्षा की नहीं है, बात तो यह है कि परमेश्वर क्या कहता है। उसने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को संदेश दिया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:10 में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यह कौन सा समय होगा? बाइबल में एक ही ऐसे समय का उल्लेख है, महाक्लेश का समय। इन लोगों का प्रतिनिधि नूह है, परंतु कलीसिया का प्रतिनिधि हनोक है। हनोक जल प्रलय के समय नहीं था, वह स्वर्ग में उठा लिया गया था। परमेश्वर चाहता है कि वह उसे नूह के साथ नौका में सुरक्षित रखता, परंतु उसने उसे उठा लेना उचित समझा। कलीसिया के साथ भी वह ऐसा ही करेगा। लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। मेरे मित्रों, हमारे रेडियो कार्यक्रम के अन्य भाषा अनुवाद में सुनता हूं, जो समझ तो नहीं पाता, परंतु वह प्रसारण करता वास्तव में अति उत्तम कार्य करता है। उठाए जाने का अर्थ यही है। एक छोटी लड़की संडे स्कूल से घर लौटी तो उसकी माता ने पूछा कि संडे स्कूल में उन्हें क्या पढ़ाया गया या क्या सिखाया गया। उस बालिका ने अपनी माता को हनोक की कहानी सुनाई। हनोक बहुत समय पहले रहता था। परमेश्वर प्रतिदिन दोपहर के समय उसके पास आकर कहता था, हनोक, क्या तू मेरे साथ टहलने के लिए चलेगा? हनोक कहता, जी हाँ प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार परमेश्वर रोज उसके पास आता और वे दोनों टहलने के लिए चले जाते। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, हनोक, आज हम बहुत दूर टहलने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। हनोक ने परमेश्वर से कहा, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। परमेश्वर ने उससे कहा, हनोक, तू मेरे घर के निकट आ गया है, तेरा घर तो बहुत दूर है, अतः तू मेरे घर ही आ जा। इस कारण हनोक परमेश्वर के घर चला गया। मैं इससे अधिक अच्छी कहानी आपको नहीं सुना सकता। कलीसिया के साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। कलीसिया अर्थात विश्वासियों की देह परमेश्वर के साथ चलते चलते एक दिन उसके घर चली जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16 उसके 16-17 में लेखक कहता है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जी हां, यह हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर अवसर है। इब्रानियों के पत्री 11:11 उसके 6 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, कैसे? विश्वास के द्वारा। मित्रों, यदि आप जब तक परमेश्वर की रीति पर चलकर उसमें विश्वास न करें तो आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी अच्छी और भले कामों को कर लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। इसलिए हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा ही उसे प्रसन्न करना है। आगे लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों की पत्री में प्रतिफल की बहुत चर्चा है, क्योंकि इसमें मसीही जीवन पर बल दिया गया है। हमारे स्वर्गवासी जीवित प्रभु के प्रकाश में मसीही जीवन का प्रतिफल है, परंतु उद्धार प्रतिफल नहीं, निर्मोल वरदान है। इसमें कोई कीमत देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिफल के लिए काम करते हैं, उद्धार के लिए नहीं। उद्धार विश्वास से होता है और विश्वासी का चाल चलन भी विश्वास के द्वारा ही है। हनोक विश्वास रखकर परमेश्वर के साथ चलता था और यही कारण है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। मेरे प्रियो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वह है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया था कि मृत्यु को ना देखे। उसने विश्वास द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास ही से नूह ने अनदेखी बातों की चेतावनी पाकर जहाज बनवाया और अपने परिवार की रक्षा की। तो आइए हम देखें नूह का विश्वास। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाबिल ने विश्वास का मार्ग दर्शाया था, हनोक ने विश्वास के आचरण का उदाहरण दिया और अब नूह विश्वास का गवाह है। हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया, परंतु एक का भी मन नहीं बदला। यह सच है कि उसने एक भी बाबुलवासी को मन फिराव के निमित्त उत्प्रेरित नहीं किया, परंतु निश्चय ही उसने अपने परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर की शरण में लिया। यह वास्तव में एक महान काम था कि उसने अपने परिवार के एक सदस्य को भी नहीं खोया। मेरे मित्रों, हम उत्पत्ति की पुस्तक में नूह का निकट निरीक्षण करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यह मनुष्य का बड़ा ही दुखद विवरण है। अदन की वाटिका से निकलने के बाद मनुष्य अति शीघ्र परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु एक ईश्वर भक्त अब भी था। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे मित्रों, इसका अर्थ क्या है? क्या यह है कि वह एक भला मनुष्य था और अपने ऋण चुकाता था तथा मनुष्यों की सहायता करने में तत्पर था? वह इससे कहीं अधिक कुछ करता था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह जल प्रलय द्वारा पृथ्वी को नष्ट कर देगा, तो उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। कहा जाता है कि जब तक वर्षा नहीं हुई थी तब तक वह बनाता ही रहा, परंतु अरारत पर्वत के निकट परात नदी से बहुत दूर नूह ने जहाज बनाना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है तो जल प्रलय अवश्य ही होगा। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसके अनुसार काम करते हैं? परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने का निर्देश दिया। यह जहाज ऐसा बेढंगा नहीं था जैसा संडे स्कूल की पुस्तकों में हमें दिखाया गया है। जब मैं एक छोटा बालक था तब मैं सोचता था कि मैं उस जहाज में कभी नहीं बैठूंगा। वह तो बहुत कुछ आज के जहाजों के समान था और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आज के जहाजों के समान ही थी। लिखा है कि उसकी लंबाई 450 फुट चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 45 फुट की थी। परमेश्वर ने नूह से कहा था उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 पद में, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। खिड़की छत तक बड़ी थी। 450 फुट के इस जहाज में 3 मंजिले थे। उस युग के कारीगर इस काम में दक्ष थे और यही कारण है कि वे ऐसे सुंदर जहाज को बना पाए। नूह जो कर रहा था वह उस युग के लोगों की समझ में मूर्खता का काम था। मेरे मित्रों, मैं प्रायः अचंभा करता हूं कि नूह के पुत्रों हाम शेम और यापेत के घर लौट आने का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि वे अपने अपने काम के लिए घर से बाहर चले गए थे। हाम शायद स्वयं ही एक दक्ष एवं निपुण वस्तुकार था और शायद वह किसी गोष्ठी में था और वहां उसने सुना कि एक मनुष्य जहाज बना रहा है। वे सोचने लगे कि यह काम वास्तव में मूर्खता का काम है। उसने उस व्यक्ति से जहाज बनाने वाले के बारे में पूछा तो पता चला कि उसका नाम नूह है। अतः उसने उनसे कहा कि वह उनसे सहमत है कि यह काम मूर्खता का है, परंतु यदि उसका पिता ऐसा कुछ कर रहा है तो निश्चय ही यह परमेश्वर की ओर से जल प्रलय की चेतावनी है, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता है। अतः निश्चय जाने कि जल प्रलय आएगा। मेरा पिता कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं जानता हूं कि जहाज बनाने में उसकी सहायता करूं। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर का गवाह था। मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट कहता हूं कि आपके लिए अपने परिवार में गवाही देना अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम है। उन्हें सुसमाचार सुनाना ही नहीं परंतु उसका आचरण प्रकट करना कि वे जाने कि आपके जीवन में वास्तविकता है। एक बार एक महिला किसी प्रचारक के पास जाकर कहने लगी कि उसे परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। प्रचारक ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या आप विवाहित हैं? उसने कहा, जी हां। आपके पास कितने बच्चे हैं? उसने कहा, 5। प्रचारक ने कहा, यह तो महान बात है कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है और आपको एक कलीसिया भी दी है। नूह ने अपने परिवार को प्रभु में जीता। उसके परिवार के अतिरिक्त किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। उसके परिवार ने उसका विश्वास किया क्योंकि वे उसकी गवाही जानते थे। नूह ने जहाज बनाकर अपने परिवार को बचा लिया और यह बहुत ही अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, आज आप अपने परिवार को बचा रहे हैं या अपने परिवार को डुबा रहे हैं? मैं आपके परिवार के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नूह ने अपने परिवार को बचा लिया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? यदि हाँ तो क्या आप अपने परिवार के लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या आप उनके प्रति एक नमूना पेश कर रहे हैं? यदि नहीं तो आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन में इस बात पर विचार करें और एक सही निर्णय लें, ताकि न केवल मैं परंतु मेरा पूरा परिवार बच जाए। जिस प्रकार नूह का परिवार बच गया विश्वास के द्वारा, उसी प्रकार आपका पूरा परिवार भी बच सकता है। क्या आज आप यीशु पर अपने विश्वास को लाएंगे? यदि हाँ तो आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और उससे कहें कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार बच जाए। मैं बचना चाहता हूं ताकि मेरे विश्वास में बढ़ोतरी हो पाए। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। कृपया प्रभु की संगति में बने रहें, उस पर विश्वास करें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन में। आते हैं उसके भवन में, खुशियाँ है, खुशियाँ है मन में। उसने